हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। पिछले बुधवार हमने इस श्लोक पर विराम दिया था हमारी कथा को, जिसमें दुर्योधन अब द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना बताने के पश्चात अब वो स्वयं की सेना मम सैन्य अपनी सेना के विषय में द्रोणाचार्य को बता रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य सम्यार्थं तान ब्रवीमि ते। और हमने पिछले हफ्ते चर्चा की द्विजोत्तम, द्विजोत्तम वो एक व्यंग से द्रोणाचार्य को कह रहा है दुर्योधन। याद है द्विजोत्तम के अलग अलग अर्थ कौन कौन से थे? द्विज का अर्थ क्या है? ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ क्या है परंतु? जिसका दूसरा जन्म होता है वो है द्विज। और हमारे दांतों को भी द्विज कहते हैं, इनका भी दूसरा जन्म होता है। तो ब्राह्मण भोजन प्रिय भी कहा गया है कि अक्सर ब्राह्मणों का परिचय दिया जाता है कि जो खाने पीने में मस्त राम। तो यहां पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है कि आप उस प्रकार के उत्तम द्विज हो शायद कि हस्तिनापुर का खा पी के यहां पर खड़े हो, परंतु मन में तो अर्जुन और पांडवों के प्रति सहानुभूति है। तो व्यंग की दृष्टिकोण से दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कह रहा है। और नायका मम सैन्यस्य कि मेरी सेना, यहां पर इस श्लोक से आप देखोगे कि दुर्योधन का जो अहम भाव है, दुर्योधन की जो देहात्म बुद्धि है, ये इस श्लोक से देखने को मिलती है कि मम सैन्य, और उसकी कोई सेना नहीं थी। इसमें अधिकांश सेना तो भगवान श्री कृष्ण की थी, नारायणी सेना उधार के लिए थी दुर्योधन ने, परंतु कह रहा है मम सैन्य कि मेरी सेना को देखिए, और मेरी सेना में जो जो नायक हैं, ऐसे नहीं कोई साधारण नहीं, बल्कि बड़े बड़े नायक, नायका मम सैन्य, और इनमें से सबसे बड़ा खलनायक ये दुर्योधन। तो और विशिष्टता कि साधारण नहीं है ये नायक, बहुत विशिष्ट है ये। तो कितने नायकों के विषय में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया पांडवों के पक्ष से? कितने थे? 21 थे। तो अब हम आगे के श्लोक में लेते हैं कि अब दुर्योधन मम सैन्य खुद की सेना के विषय में कौन कौन से योद्धाओं का विवरण दे रहा है। तो एक साथ मेरे पीछे दोहराइए, भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो अब यहाँ पर दुर्योधन, ये दो श्लोक आज हम लेंगे, जिसमें दुर्योधन अब अपने स्वयं की सेना के विषय में या कुरु सेना के विषय में दुर्योधन बता रहा है। तो सबसे पहले कहता है भगवान आप, अर्थात द्रोणाचार्य, भगवान भीष्म च कर्ण च कृपश्च
समितिम जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिश्च एव।
तो यहाँ पर दुर्योधन अपनी सेना से सात योद्धाओं के नाम बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पांडवों की सेना के विपरीत पांडवों की सेना के 21 योद्धा और अपनी सेना के केवल सात, उसे केवल सात ही दिखाई दिए कहने लायक कि मेरी सेना में ये बताने लायक हैं कोई मेरी टीम के प्लेयर। तो तीन गुना ज्यादा वहां पर खड़े हैं सामने, केवल 21 वहां पर और सात केवल यहां पर। तो दुर्योधन अब उसे समझ में आ रहा है कि उसकी सेना हालांकि मात्रा में बहुत है, मात्रात्मक दृष्टिकोण में बहुत है। कितनी अक्षौहिणी? 11 अक्षौहिणी और ये पांडव 7 अक्षौहिणी सेना। तो मात्रा के दृष्टिकोण में देखा जाए तो पांडवों की सेना बहुत कम थी, परंतु गुणात्मक दृष्टिकोण से क्वालिटी क्वालिटेटिवली यदि आप देखो तो यहां पर दुर्योधन वो डर के मारे अब वो बता रहा है कि वहां पर 21 और यहां पर 7 ही केवल। परंतु उसे अब समझ में आ रहा है कि ये सारे जो खड़े हैं इनमें से अधिकतर तो मन में उनके ही पक्ष में है, भीष्म भगवान आप और फिर कृपाचार्य और बाकी जो वो बता रहा है वो तो ठीक है कि कर्ण वो तो मेरे पक्ष में, परंतु कर्ण के विषय में हम चर्चा करेंगे कि कर्ण की स्थिति कैसी थी, कि कर्ण के विषय में तो वो कर्ण को लेकर और भी ज्यादा डरा हुआ था। और फिर भूरिश्रवा ये इन सब योद्धाओं यहाँ जो भी दिख रहा है उनका नाम बता रहा है ये, परंतु इसके पीछे इसका जो भय इसका जो डर छिपा हुआ है क्योंकि इसे और कोई दिख नहीं रहा। और ये श्लोक अब वो इसलिए थोड़ा जोर से बोल रहा है दुर्योधन, क्योंकि उसने देखा कि उसकी सेना के कुरु सेना के जो बाकी योद्धा हैं, वो बाकी सारे योद्धा ये डर गए अब सुनकर कि दुर्योधन पांडवों की सेना का इतना गुणगान कर रहा है। तो 21 वहां के योद्धा बता रहा है और वो भी महारथी, उसकी हमने चर्चा की महारथी उनके गुण क्या है याद है? दस हजार योद्धा के साथ एक महारथी अकेले युद्ध कर सकता है और शस्त्र एवं शास्त्र प्रवीण, कि दोनों में प्रवीण रहता है महारथी, शस्त्रों में और शास्त्रों में। तो दुर्योधन अब अपनी सेना के विषय में इनको ये महारथी वगैरह इतना नहीं बता रहा, क्योंकि पता है कि शास्त्र वास्त्र तो ये लोग ज्यादा जानते हैं, शस्त्र भी थोड़ा बहुत जानते होंगे शायद, परंतु ये जानता था कि जो पांडव सेना के हैं वो शास्त्र बहुत अच्छी से जानते हैं और शस्त्र भी। तो उनके विषय में महारथी उनको कहा, इसलिए जब इतना गुणगान पांडव सेना का कर दिया तो अब उसने देखा कि उसकी सेना के जो योद्धा वो थोड़ा डर गए कि भाई इतना गुणगान ये हमारा दुर्योधन उनका ही कर रहा है। तब उनको सांत्वना देने के लिए अब ये अपनी सेना का गुणगान कर रहा है। तो यहां पर 7 योद्धाओं के नाम वो बता रहा है। अब यहां पर आप देखो कि वैदिक संस्कृति जो है इसमें आदर एवं शिष्टाचार इसे बहुत महत्व दिया जाता है, कि आपकी वाणी में भी आप किसे कैसे कितना आदर देते हो इस पर निर्भर करता है कि आपकी संस्कृति कैसी हुई है, आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। अक्सर हम देखते हैं आजकल भी जब कोई ठीक से बोल नहीं सकता, उसकी वाणी यदि मधुर नहीं, बहुत कटु वाणी किसकी होती है, बहुत अपशब्द बोलने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो अक्सर बोलते हैं यही सिखाया घर में, माँ बाप ने यही सिखाया, सीधे माँ बाप तक पहुंच जाते हैं, उसे कुछ नहीं कहते, माँ बाप तक पहुंच जाते, तो कई बार वो और गुस्सा माँ बाप को बीच में ला, फिर वो और शुरू कर जाता है और अपशब्द शुरू करता है। तो वैदिक संस्कृति कैसे समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति वो वैदिक संस्कृति का पालन कर रहा है, कि सबसे पहले उसके व्यवहार में, उसके व्यवहार में अर्थात उसकी वाणी में, उसके हालचाल में, उसके पहनावे में, उसकी आदतों में, और जो उसूल वो अपने जीवन में पालन कर रहा है, इन सब से पता लग जाता है कि वो दैवी गुणों का है या आसुरी गुणों का है, या दैवी संस्कृति से संबंधित है या आसुरी संस्कृति से संबंधित है। तो यहां पर दुर्योधन की भाषा से समझ में आता है कि वो कौन सी संस्कृति से संबंधित है। अब देखिए, सामने उसके खड़े हैं द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, ये तीन बड़े बड़े दिग्गज कुरु सेना के। तो इनमें से अब दुर्योधन वो अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ जो मान रहा है, कि अपनी वाणी में वो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है नाप तोल कर, परंतु यहाँ पर समझ में आता है कि उसकी जो असली संस्कृति, जो भी उसे ट्रेनिंग मिली, प्रशिक्षण उसे जो मिला, वो बाहर आ रहा है। कि सबसे पहले उसने कह दिया भगवान आप है सबसे बड़े, कौन? द्रोणाचार्य, और उसके पश्चात भीष्म। ये गलत, सबसे बड़ी गलती यहां पर ही हो गई इसकी, क्योंकि यदि द्रोण और भीष्म इनकी तुलना यदि कोई करे तो इनमें वरिष्ठ कौन है, किसका आदर पहले होना चाहिए? भीष्म का आदर पहले होना चाहिए, परंतु यहां पर दुर्योधन उस शिष्टाचार को नहीं जानते हुए सबसे पहले द्रोणाचार्य को उल्लेख कर रहा है। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि दुर्योधन की संस्कृति कैसी है। अब इसी भगवद गीता के पहले अध्याय में आप देखोगे कि अर्जुन भी जब दोनों सेनाओं को देखते हैं, जैसे कि दुर्योधन देख रहा है दोनों सेना को, पहले पांडवों की सेना को देख लिया, अब अपनी सेना को देखते हुए अर्जुन दुर्योधन ने जो कहा भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, तो अर्जुन ने भी देखा। आगे चलकर हम इस श्लोक को भी लेंगे कि अर्जुन दोनों सेना के मध्य में, सेनायोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे च्युत, अर्जुन ने जब अच्युत, भगवान श्री अच्युत को कहा कि मेरे रथ को बीच में ले चलो इन दोनों सेनाओं के, तो क्यों अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाना चाहता था? क्योंकि वहां से वो देखना चाहता था कि ये दोनों कितने उत्साही हैं युद्ध के लिए, पांडु सेना के और कुरु सेना के। तो अर्जुन भी देख रहा है उसी दृश्य को, कौन से दृश्य को? द्रोण, भीष्म, कृपा। तो अर्जुन क्या कहता है, दोनों में अंतर देखिए। ये अर्जुन उवाच, ये श्लोक क्रमांक, ये दूसरे अध्याय का, क्षमा कीजिए, दूसरे अध्याय का है, दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 4। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजारावरि सूदन। तो यहां पर अर्जुन बता रहा है भगवान श्री मधुसूदन को कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम। यहां पर अर्जुन सबसे पहले नाम किसका ले रहा है? भीष्म, ना कि द्रोण। ये नहीं कहा कथम द्रोणम च भीष्मम अहम संख्ये, ना, पहले भीष्म का नाम। तो यहाँ पर अर्जुन में और दुर्योधन में यही अंतर है कि अर्जुन हालांकि दुर्योधन से ज्यादा विषाद में उस समय डूबे हुए थे, अर्जुन ज्यादा विषाद में थे, परंतु जो शिष्टाचार है उसे भूले नहीं अर्जुन कि किसका नाम पहले बोलना चाहिए आदर की भावना से, तो वो भूले नहीं अर्जुन। और दुर्योधन अहम ममेति, अहम अपने अहंकार के कारण वो सब कुछ भूल रहा है यहाँ पर। तो और देखिए कि कलयुग में ये सब कोई इतना ध्यान नहीं देता कि आप किसका नाम पहले बोल रहे हो, किसका नाम बाद में बोल रहे हो, कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। कलयुग में ये सब कुछ कोई पूछता नहीं इतना, परंतु वैदिक संस्कृति में ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मदेव ये सब जानते हैं कि वैदिक संस्कृति में भाषा भी कैसी होनी चाहिए, कैसी सुशिक्षित भाषा होनी चाहिए, ये सब जानते हैं। वो सब ध्यान से दुर्योधन की हर एक शब्द को, हर एक वाक्य को वो सुन रहे हैं। और पहले से दुर्योधन का तो रिकॉर्ड खराब ही था, अब यहाँ पर वो और भी ये सब बोल बोल कर खराब कर रहा है। तो ये अंतर। और इसमें भी आप देखोगे कि न केवल अर्जुन बल्कि सभी, युधिष्ठिर महाराज भी, हमने इसकी चर्चा की कि जब पूरी गीता हो गई सुनाकर उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपना मुकुट उतारा, कवच पूरा उतारा, शस्त्र सारे रखे और नंगे पैर युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले गए भीष्म पितामह, सबसे पहले भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श किया। तो युधिष्ठिर महाराज वो भी अर्जुन की ही तरह युधिष्ठिर महाराज। और यहाँ पर आप देखोगे कि पांच पांडवों में कितनी मैत्री थी कि अर्जुन ने भी भीष्म देव को आदर दिया और युधिष्ठिर महाराज ने भी भीष्म देव को पहले आदर दिया। और हम देखेंगे कि 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के जो अन्य भाई, इनमें किस प्रकार की मैत्री थी। तो अब दुर्योधन अपने सेना मम्मट सैन्य स्वयं की सेना की सूची दे रहा है योद्धाओं की। तो उसका क्रम देखिए, सबसे पहले द्रोणाचार्य कि द्रोणाचार्य को आदर देते हुए, फिर तत्पश्चात भीष्म, फिर कर्ण, फिर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये 7 योद्धा। तो इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले वो द्रोणाचार्य को दुर्योधन क्या सोचते हुए सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम पुकार रहा है कि दुर्योधन सोच रहा है कि भीष्म देव ये एक क्षत्रिय है और द्रोणाचार्य ये है ब्राह्मण, तो वो ये कैलकुलेशन कर रहा है कि यदि क्षत्रिय और ब्राह्मण में देखो तो ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय से ऊंचा है ब्राह्मण। तो इसलिए दुर्योधन का ये कैलकुलेशन है कि इसलिए द्रोणाचार्य का नाम पहले लेना चाहिए। परंतु यहाँ पर दुर्योधन वो केवल एक वर्णाश्रम, जो वर्ण और आश्रम है, वर्ण और आश्रम को देखते हुए वो ये अपनी बुद्धि लगा रहा है, परंतु भीष्म देव वो वर्णाश्रम से ऊपर हैं, परे हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं और वो महाजन हैं। इसलिए भीष्म देव को वर्णाश्रम में समाविष्ट करना ये एक प्रकार का अपराध रहेगा कि वो वर्णाश्रम से बहुत परे हैं भीष्म देव, परंतु दुर्योधन ये नहीं जानता उनके विषय में। हालांकि इतने साल वो भीष्म देव के साथ रहा, परंतु इतना ज्ञान उसे हुआ नहीं कि भीष्म देव ये वर्णाश्रम से परे हैं। तो द्रोणाचार्य को पहले, और वो भी दुर्योधन वो द्रोणाचार्य को इसलिए पहले उल्लेख कर रहा है कि दुर्योधन ये सोच रहा है कि भीष्म देव तो क्षत्रिय हैं और वो तो सेनापति हैं, कुरु सेना के सेनापति भीष्म देव, तो वो तो लड़ेंगे ही, क्षत्रिय होने के नाते वो तो ठीक से लड़ेंगे ही, परंतु ये जो द्रोणाचार्य है इनको पहले मैं बोल दूं, इनका नाम पहले इनकी चापलूसी में कर लूं, क्योंकि एक तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो होते हैं उनके अंदर कृपा भावना ज्यादा होती है, इसलिए इनके अंदर कृपा भावना ज्यादा है, इसलिए थोड़ा इनको पहले मैं संभाल लूं ताकि ये ठीक से युद्ध करते रहे। और दुर्योधन ये सोच रहा था कि अर्जुन और अन्य पांडव वो जब द्रोणाचार्य के सामने आएंगे तो वो थोड़ा फकफका सकते हैं, थोड़ा वो फकफका जाएंगे द्रोणाचार्य के सामने, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सिखाया इन सबको, तो इसलिए दुर्योधन ये सब कुछ सोचते हुए पहले द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है और फिर तुरंत द्रोणाचार्य के नाम के बाद भीष्म, तुरंत इनका भी नाम ले लेना चाहिए क्योंकि इनका नाम ही है भीष्म, भीषण, ये जो भी कुछ करते हैं भीषण तरीके से करते हैं, इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली वो भी भीषण प्रतिज्ञा थी, इसलिए तो इन्हें नाम मिला, अन्यथा इनका नाम क्या था? देवव्रत। परंतु इन्हें वो जो प्रतिज्ञा लेने के बाद इन्हें सभी भीष्म पितामह के नाम से ही जानते थे। तो भीष्म देव, इनके विषय में बताया गया है कि भीष्म देव जो कि श्रीमद् भागवत के अनुसार 12 महाजनों में से एक महाजन है भीष्म देव, और भीष्म देव इनका जो सौभाग्य ऐसा था कि रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इन्होंने अपने प्राण त्यागे, कि इनसे ज्यादा सौभाग्य और किसी का नहीं था, इसलिए भीष्म देव वो अर्जुन को युद्ध के पश्चात एक अर्जुन को थोड़ा चिढ़ाने के लिए भीष्म देव अर्जुन को बोल रहे थे कि अर्जुन तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा सौभाग्य था कि कृष्ण तुम्हारे सारथी बने, नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा मेरा सौभाग्य था अर्जुन। तो अर्जुन पूछे, अरे भाई सारी दुनिया मेरे सौभाग्य के विषय में कह रही है कि भाई अर्जुन तुम जैसा योद्धा और तुम जैसा व्यक्ति की भगवान स्वयं तुम्हारे सारथी बने, इतने तुम निकट भगवान के 18 दिन और उसके भी पहले। तो अर्जुन ने पूछा कि आपका सौभाग्य मुझसे ज्यादा कैसे, आपको तो मारने के लिए उठे थे भगवान, चक्र पहिया उठा लिया था। तो भीष्म ने कहा कि मेरा सौभाग्य ऐसा था कि तुम हालांकि रथी थे और भगवान सारथी तुम्हारे, परंतु तुम हर समय रथी होने के कारण भगवान के पीछे, इसलिए तुमने हर समय भगवान की पीठ का ही दर्शन किया और मैं शत्रु पक्ष में इसीलिए गया। भीष्म देव अर्जुन से कहते हैं कि एकमात्र कारण मेरा शत्रु पक्ष इस दुर्योधन कपटी ये खल दुर्योधन इसके ध्वज के नीचे मैं क्यों खड़ा था, क्योंकि मैंने देख लिया कि यदि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहूंगा तो भगवान का दर्शन सामने से होता रहेगा। तो ये है इनका गुण कि भगवान का दर्शन करने हेतु ये अपना नाम खराब कराना भी चाहते थे कि मेरा नाम भी खराब हो जाए कि दुर्योधन के पक्ष में मैं लड़ा, परंतु 18 दिन भगवान, और क्यों, हालांकि भगवान का दर्शन तो उन्होंने बहुत किया था, परंतु भीष्म देव वो वीर रस में थे, वो क्षत्रिय उस रस में थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, इसलिए भीष्म देव वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा रणभूमि में ही देखना चाहते थे, उनमें उनको ज्यादा रस मिल रहा था, और कोई समय नहीं होता जब भगवान श्री कृष्ण पूरे योद्धा के वेश में, योद्धा के पोशाक में भगवान श्री कृष्ण, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण अन्यथा तो हाथ में बांसुरी लिए, मोर मुकुट और एकदम एक कोमल ग्वाले के समान भीष्म, परंतु भीष्म पितामह को भगवान का वो रूप इतना ज्यादा नहीं सुहावना लगता था जितना कि जब भगवान ने वो पहिया उठा लिया तो वो तो अल्टीमेट था भीष्म देव के लिए। वो तो मतलब हाँ, इसी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आपके हाथ में उस बांसुरी के बदले ये पहिया हो मुझे मारने के लिए। और भगवान पसीना पसीना और युद्ध रणभूमि की धूली भगवान के ऊपर और भगवान के मुख से कुछ रक्त की बूंदे भी, तो भीष्म देव इस दृश्य को देखते हुए वो भाव विभोर हो रहे थे, वो झूम रहे थे एक्सटसी में। तो भीष्म देव अर्जुन को चिढ़ा रहे हैं, तुम्हारा कोई इतना सौभाग्य नहीं है अर्जुन, इतने वट फूलो तुम, तुमसे ज्यादा तो मेरा सौभाग्य। अरे मैं सामने से दर्शन ले रहा था। और इसलिए भीष्म देव वो युद्ध में जानबूझकर जहां पर भी वो युद्ध करते थे, जिसको भी मारने के लिए, उसे अर्जुन के रथ के सामने ही ले चलते, चलो युद्ध ही करना है ना, इधर हो। तो युद्ध करते करते वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते रहते और इसमें ही उनको आनंद था। इसीलिए क्योंकि इतनी उत्सुकता भीष्म देव की भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की, तो जब वो दसवें दिन बाणों की शैया पर रणभूमि में वो जब लेट गए, तो फिर पूरे युद्ध के पश्चात स्वयं भगवान आए अपना दर्शन देने के लिए। क्योंकि इतनी उत्सुकता भीष्म देव के अंदर जब उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपना दर्शन लेने भीष्म देव के अंतिम श्वास लेते समय में आऊंगा। तो यहाँ पर हम भीष्म देव से क्या सीख रहे हैं, हालांकि दुर्योधन ये सब नहीं सीख रहा, परंतु हमें क्या सीखना है उनसे कि हमारे अंदर इतनी उत्कंठा होनी चाहिए भगवान का दर्शन करने हेतु। तो इसलिए भक्त सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, उन्होंने कहा कि हमारी सेवा इतनी होनी चाहिए भगवान के प्रति कि हमसे ज्यादा भगवान इच्छा करें हमें देखने की। और एक उदाहरण दिया गया है कि एक ब्रिटिश एक फैक्ट्री थी, जिसमें जो मालिक था उस फैक्ट्री का बहुत रईस पैसे वाला, और बहुत सी उसकी फैक्ट्रियां थी। तो हर साल अपनी एक एक फैक्ट्री में जाता और वहां पर सब देखता कि क्या कैसा चल रहा है फैक्ट्री में, सब कितने लोग काम कर रहे हैं, का मजदूर कितने हैं, स्टाफ कितना, सब कुछ देखता हो। तो एक फैक्ट्री में उसने देखा कि उसमें सभी मजदूरों का अटेंडेंस दिखाया गया, तो उसमें से एक मजदूर उसने कभी छुट्टी नहीं ली, पूरे साल में एक भी छुट्टी उसकी नहीं। तो ये इसने कहा कि मुझे इस मजदूर से मिलना है जिसने एक भी छुट्टी नहीं ली। तो वो मजदूर कहीं फैक्ट्री के किसी डिपार्टमेंट में किसी मशीन पर वो काम करता हुआ फैक्ट्री के किसी कोने में, उन्हें ढूंढना पड़ा, क्योंकि मालिक देखना चाहते हैं, तो ले गए मालिक को, तो सब कुछ साफ वगैरह किया गया, उसे कहा तुम उधर ही रहना जहां पर भी हो, आज मैं छुट्टी ले लेना। तो ये जब मालिक वहां पर पहुंचे, तो मालिक ने उस मजदूर से पूछा कि तुम्हारा ये नाम है? मजदूर ने कहा आपका नाम क्या है? मजदूर पूछते, क्योंकि कभी एक दूसरे को मिले नहीं, मजदूर तो कभी जानता भी नहीं था कि मेरा मालिक भी है। तो मजदूर वो अपना रोज आकर काम सेवा कर वो सही समय पर आता, सही समय पर जाता, और वो कभी उसने जानने की भी चेष्टा नहीं की कि ये मेरा मालिक कौन है। और जब वो मालिक आया देखने के लिए, तो मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे फैक्ट्री का मालिक हूं, और मैंने जब देखा तुम्हारा रिकॉर्ड तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा दर्शन करूं। तो ये उदाहरण ये दिया गया है कि इस मजदूर ने उस मालिक को अपने यहां पर बुलवा लिया, कि और किसी की ये क्षमता नहीं कि वो मालिक के ऑफिस में जाकर मालिक का दर्शन भी कर सके या मालिक से बात भी कर सके। इसमें और कुछ नहीं किया, कोई अर्जी नहीं डाली, कोई एप्लीकेशन, कुछ नहीं, मालिक स्वयं आया। तो ये उदाहरण दिया गया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा में इतने मग्न होते हैं कि भगवान स्वयं उनको आना पड़ता है इस भक्त को कहने के लिए कि मैं आया हूँ तुम्हारे उद्धार हेतु। कई तो ऐसे भक्त हैं कि जब स्वयं भगवान आते हैं उन्हें भगवत धाम ले जाने के लिए तो भगवान को मना कर देते हैं कि भगवान आप भगवत धाम ले जाने आए हो परंतु जो सेवा मुझे यहाँ पर मिल रही है वो भगवत धाम में नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर तो बहुत सेवक हैं आपके, वहां पर तो इतने सारे सेवक हैं परंतु यहाँ पर सेवकों की कमी है इस भौतिक संसार में। इसलिए इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा आनंद कौन सा है? हा? उसे कहते हैं भवानंद, भव जो कि इस भौतिक संसार को श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद ने उनको नाम दिया भवानंद। तो वो थोड़ा अचरज किए कि ये क्या नाम मिला भवानंद, इसका अर्थ मैं इस भव सागर में आनंद हूं? तो वे प्रभुपाद के पास इसका अर्थ क्या है, तो प्रभुपाद ने कहा भवानंद का अर्थ है कि इस भव इस भौतिक संसार में एक ही आनंद है और वो है भगवान के प्रचार का आनंद। भगवान के विषय में जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो उससे ज्यादा आनंद इस भौतिक संसार में नहीं है। और श्री प्रभुपाद ने कहा ये इसलिए क्योंकि ये एक सेवा आध्यात्मिक संसार में नहीं है, बाकी सारी सेवाएं हैं नाम कीर्तन भगवान के अर्च विग्रह की सेवा और अन्य सेवाएं सब कुछ है परंतु वहां पर ये प्रचार की सेवा नहीं है क्योंकि किसको प्रचार करेंगे वहां पर? वहां पर कोई बुधवार का कार्यक्रम नहीं होता कि आध्यात्मिक संसार में गोपियां और गोप आकर बैठते हैं और उन्हें फिर गीता के एक एक श्लोक सुनाए जाते हैं। वहां पर तो सब दिग्गज बड़े बड़े भगवान के नित्य पार्षद हैं, वहां पर किसी को प्रचार कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये जो सेवा है प्रचार की ये केवल इस भौतिक संसार में, इसलिए कई भक्त भगवान को कह देते हैं कि ये सेवा हमसे मत छीनिए क्योंकि आप यदि हमें वहां पर ले जाओगे तो हम अनंत वाइड रह जाएंगे फिर वहां पर, क्योंकि ये सेवा जो सबसे ज्यादा आवश्यक है यहाँ पर। तो फिर भीष्म जैसे व्यक्ति भीष्म जैसे भक्त भगवान के वो भगवान की इस प्रकार ये अहितु की सेवा में लगे रहते हैं। और फिर दुर्योधन वो तुरंत भीष्म पितामह के बाद कर्ण, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्ण का नाम दुर्योधन इसलिए ले रहा है कि कर्ण युद्ध के पहले कर्ण को भीष्म पितामह ने कुछ ऐसा कहा था कि कर्ण वो युद्ध में नहीं आया था, और कर्ण युद्ध भूमि में कब आया कोई जानता है? 11वें दिन कर्ण युद्ध भूमि में आया क्योंकि युद्ध के पहले भीष्म पितामह जो कि सेनापति वो सभी योद्धाओं को कह रहे थे कि कहाँ कहाँ तुम्हें रहना है, तो कर्ण भी खड़ा था तो भीष्म पितामह ने कहा इसे बाहर करो, ये अर्धरति भी नहीं, निकालो इसे बाहर, ये लायक भी नहीं हमारे सेना में खड़े होने के, किसे? कर्ण को। तो कर्ण का पारा ऐसा चढ़ गया, कर्ण में इतना क्रोध और दुर्योधन में उससे ज्यादा, दुर्योधन पितामह आप मेरे मित्र कर्ण को ऐसे बोलते हैं, इसे अर्धरथी बोलते हैं, इतना बड़ा अपमान, ये कर्ण जो अतिरथी है, ये कर्ण जो यही अर्जुन को मारेगा इसको आप अर्धरथी बोल रहे हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा और क्या, ये तो सूत पुत्र है। तो भीष्म पितामह एक के बाद एक बाण पे बाण वाग बाण मार रहे थे कर्ण के ऊपर। तो भीष्म पितामह ने इसलिए कहा कि ये अर्धरथी है क्योंकि इतिहास है, कर्ण का इतिहास है, कर्ण के इतिहास से पहले भीष्म पितामह का इतिहास है कि भीष्म पितामह जब वो तीन पुत्रियों को लेकर आए थे امبا، امبیکا، امبالیکا، تو ان میں سے امبا وہ بھیشم پتامہ سے وواہ کرنا چاہتی تھی. تو جب بھیشم پتامہ انہیں لے کر آئے، اپہرن کر کر وہ لے کر آئے، کس کے لیے؟ اپنے وچتر ویریہ اور کون سے پانڈو، شاید ان کے وواہ کے لیے لائے تھے، چترانگد، ہاں وچتر ویریہ چترانگد ان کے لیے. تو ان میں سے راستے میں آتے سمے جو امبا، ان میں سے جو امبا تھی، ان کا پریم ہو گیا، کیا کہتے ہیں، دل آ گیا، بولے کہ اور کوئی آپ بھی چاہیے ہم کو. تو بھیشم پتامہ بولے میں تو برہمچاری کا ورت لیا ہوں. تو بھیشم پتامہ نے تو منع کر دیا. تو پھر امبا وہ کوئی سادھارن مہیلا نہیں تھی، سادھارن استری نہیں تھی. تو پرشورام جی تک ارجی پہنچی امبا کی، پرشورام جی جو کہ بھیشم پتامہ سے گرو، ان کو کہا کہ یہ بھیشم پتامہ یہ ہم کو لے کر آئے، تو میں تو ان سے ہی وواہ کرنے والی. تو پرشورام جی نے، وہ تو برہمچاری ہے، تو کیا مسئلہ، آپ کہو ان کو کہ میرا وواہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو پرشورام جی جا کر بھیشم پتامہ کو کہے کہ وہ دیکھیے یہ کیا، آپ ہمارے گرو جی ہیں. اس لیے شاستر میں کہا گیا ہے کہ ششیہ اپنے گرو کی یہ ایک آگیا کا اولنگھن کر سکتا ہے. یہ شاستر میں ورنن ہے کہ یدی گرو کہے ششیہ کو کہ وواہ کرو، ششیہ گرو سے کہتا ہے نہیں، جا جو کرنا کرو. اور کبھی بھی ششیہ گرو کی اوگیا نہیں کر سکتا، وہ اپرادھ ہے. پرنتو یہ آگیا کا اولنگھن ششیہ کر سکتا ہے گرو. تو بھیشم پتامہ نے کہا نہیں، جو آپ کو کرنا ہے کرو. تو پرشورام جی پھر اٹھا لیا اپنا شستر وغیرہ، چلو پھر یدھ میں اکھاڑے میں آؤ، دیکھتے ہیں. تو بھیشم پتامہ چلو، تو دونوں کا یدھ ہوا، بھیشم پرشورام جی کا یدھ ہوا، اور اس یدھ میں بہت گھماسان یدھ ہوا، دونوں کا سادھارن نہیں، تو گھماسان یدھ ہوا. دیکھیے امبا دیکھ رہے، باپ رہی تو بہت اوپر تک بات پہنچ. تو گھماسان یدھ ہو رہا ہے، اور اس میں پھر بھیشم پتامہ نے پرشورام جی کو ہرا دیا. تو پرشورام جی جب ہار گئے تو پرشورام جی پرسن ہوئے کہ میرا دیکھو میرے ٹریننگ ملا ہوا شیشے. تو کوچ جب ٹریننگ دیتا ہے اپنے اسٹوڈینٹ کو، اور اسٹوڈینٹ جب کوچ کو ہرا دے تو کوچ کو اچھا لگتا ہے. تو پھر پرشورام جی کو اچھا لگا، پرنتو پرشورام جی نے پھر ایک ورت لیا کہ میں کسی بھی کھتریوں کو کبھی ٹریننگ نہیں دوں گا آگے سے، میں دوں گا تو خالی براہمنوں کو، کسی بھی کھتریوں کو نہیں پرشکشن دوں گا. تو یہ پرشورام جی نے ورت لے لیا تھا. اور اس کے پشچات کرن پہنچا پرشورام جی کے پاس یدھ کلا سیکھنے کے لیے. تو پرشورام جی نے پوچھا تم کون ہو؟ کھتری ہو؟ نہیں، برہمن ہوں. جھوٹ بولا کرن نے، وہ ودیا سیکھنے کے لیے نے جھوٹ بولا. اور یہ کتھا ہم نے سنی ہوگی کہ ایک دن جب پرشورام جی وہ تھک کر لیٹنا چاہ رہے تھے، تو جنگل میں وہاں پر اپنی کٹی میں تکیا وغیرہ تو تھا نہیں، تو کرن کو کہا کہ تم یہاں پر پلاکھی مار کر بیٹھو، کیا بولتے مانڈی ڈال کر بیٹھو، اور تمہاری مانڈی کو میں تکیا بنا کر میں کچھ آرام کرنا چاہوں. تو کرن گرو سیوا، تو کرن ترنت راضی ہو گئے. اور اس سمے وہ ایک بڑا بھونرا وہ کرن کی دوسری مانڈی کو ڈنک مارنے لگا. اور کرن تھا کھتری، تو کھتری ہونے کے کارن کرن نے اس کو سہن کر لیا. وہاں پر خون چاروں طرف، خون کا ایک سروور جیسا بن گیا کرن کے شریر سے نکلا ہوا رکت. اور جب وہ رکت پرشورام جی کو سپرش ہوا، اور وہ ایک دم گرم گرم رکت تھا، کیونکہ کھتری تھا، कर्ण का। तो परशुराम जी उठे, चारों तरफ रक्त रक्त। तो परशुराम जी ने देखा कि रक्त आ कहां से रहा, और पता लगा परशुराम जी को तुरंत। अब ज्यादा करके जब कोई गुरु यदि ये सब देखेगा तो शिष्य को कहेगा, अरे ऐसा शिष्य मुझे मिला कि इतना सहन कर लिया कि भौरा डंक मार रहा है परंतु फिर भी मैं वहां पर अपनी नींद से उठ न सकूं, मेरी नींद भंग न हो, परंतु ये सब कुछ नहीं, सीधा श्राप ये केवल एक क्षत्रिय सहन कर सकता है। तुम बोलो, तुम झूठ बोले कि नहीं। अब देखिए कि परशुराम जी उन्होंने वो इस निष्कर्ष पर इसलिए आए क्योंकि एक ब्राह्मण वो कभी भी रक्त को इस प्रकार से देखकर सहन नहीं कर पाएगा। एक तो शारीरिक बल नहीं होता उनके अंदर इतना कि वो भौरे को दूर से ही देखते परशुराम जी को उठा देते थे। वो ब्राह्मण अगर कोई होता तो दूर से भौरे को देखकर परशुराम जी को, अरे उठो उठो हम दोनों चलो देखो भौरा क्या कर रहा है। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं हम तो कुरुक्षेत्र की रण भूमि की बातें कर रहे हैं। हो गए, पता लग गया किसका। तो वो क्योंकि एक जो ब्राह्मण है वो ये सब कुछ, ये खून खराबा और ये सब कुछ कभी सहन नहीं कर सकते। हमारे एक मित्र वो बता रहे थे कि उनके एक मित्र वो रक्तदान देने के लिए गए, क्या शिविर उनका होता ना ब्लड बैंक वगैरह जो होता है वहां पर, किसी को वो चाहिए था उनके ब्लड ग्रुप, वहां पर गए तो उन्होंने जब देखा कि वो निकालते ना यहाँ से निकाल को नली लगा देते हैं और सारा उसमें बॉटल में भरता रहता है, उन्होंने देखा ये मेरा है, आप ही क्या। वो देख कर बेहोश हो गए, वो आए थे किसी और की मदद करने के लिए और डॉक्टर आ रहे थे इनको संभालो पहले ये जा रहे जो रक्त दे रहे। वो इतना खून कभी देखा नहीं, वो भी खुद का खून, इतना खून देखते ही बेहोश। तो यहाँ पर फिर परशुराम जी ने जब कर्ण को देखा तो परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि तुमने झूठ बोला, इसलिए जो कुछ तुमने सीखा है वो जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब तुम भूल जाओगे। देखिए बहुत बड़ा श्राप था कि एक योद्धा के लिए इतना सब कुछ सीखा। ये मानना ऐसा कि कोई विद्यार्थी उसको कोई प्रोफेसर श्राप दे दे कि मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया कि कोई शिक्षक विद्यार्थी को कहे कि मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया वो एग्जाम के एक दिन पहले, एक घंटा पहले या एक मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही तब भूल जाओगे, तो बहुत बड़ा श्राप है ना। तो इसलिए भीष्मदेव वो जानते थे, भीष्मदेव जानते थे कि कर्ण को ये श्राप मिला है, और क्योंकि भीष्मदेव जानते थे कि उनके गुरु के साथ खिलवाड़ तुमने किया था, परशुराम जी जो भीष्मदेव के गुरु इनके साथ खिलवाड़ किया, तो जानते थे कि तुम किसके साथ खिलवाड़ की थे मैं सब जानता हूँ, तुम्हें क्या क्या तुम्हारे क्या डिग्री में लिखा सब जानता हूँ, मार्कशीट में क्या है तुम्हारे। इसलिए वो कह रहे तो अर्ध रचि कोई काम का नहीं, निकालो भारी से, क्योंकि जब सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो ये खाली वहां पर भार बन के खड़ा रहेगा। तो इसलिए कर्ण वो इस अपमान को सहन नहीं कर सका, इसलिए कर्ण ने कहा जब तक ये भीष्म पितामह जब तक ये धर्म भूमि में रहेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। वो भी क्षत्रिय भाई, वो कोई साधारण नहीं, उसका भी मान ऐसा कोई साधारण नहीं है जिसका मान टूटा गया है, तो वो बाहर था। इसलिए दुर्योधन वो तुरंत भीष्म पितामह की बात कर्ण कि कर्ण देखो मैं तुम्हें भीष्म पितामह के ही समान उसी लाइन में तुम्हारा भी नाम ले रहा हूं, तो कर्ण को सांत्वना देने के लिए कि तुम ग्यारहवें दिन या जो भी भीष्म पितामह जिस दिन रणभूमि छोड़ेंगे तो तुम्हें फिर से आना है, तो इसलिए कर्ण का नाम। और फिर कृपाचार्य कि फिर दुर्योधन को आजादी दे रही, कृपाचार्य को तो भूल ही गए, इनका तो नाम बोलना चाहिए। तो कृपाचार्य का नाम इसलिए द्रोणाचार्य को सुना रहा है क्योंकि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य में संबंध क्या था? ये जीजा जी और द्रोणाचार्य इनके नहीं, द्रोणाचार्य जीजा जी और ये इनके साले, तो साले जीजा। तो दुर्योधन ने कहा साले जीजा दोनों यहाँ पर हैं, तो मैं साला क्या कर रहा हूँ? तो इसलिए वो कृपाचार्य उनको भी नाम, उनका भी उल्लेख कर उन्हें पुकार रहे हैं कि हाँ ये देखो ये कृपाचार्य ये भी आपके साले ये भी यहाँ पर खड़े हैं। तो फिर और कृपाचार्य के बाद अश्वत्थामा, क्योंकि ये सब द्रोणाचार्य से संबंधित, अश्वत्थामा पुत्र कृपाचार्य इनके साले मिया ये सब। और यदि आप श्लोक आपको याद है तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा के बीच में, ये दोनों के नामों के बीच में दुर्योधन कह रहा है समितिं जय, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि वो समितिं जय क्यों कहा इन दोनों के नामों के बीच में। उससे पहले दोनों को ले लेते हैं, विकर्ण और भूरिश्रवा। तो विकर्ण का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि विकर्ण को तो इतना कुछ आता ही नहीं था, युद्ध में कुछ इतना निपुण नहीं था, हालांकि वो दुशासन से ज्यादा निपुण था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुर्योधन ने दुशासन का नाम क्यों नहीं लिया यहां पर? दुशासन भी वहां पर खड़ा था, तो दुशासन का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि दुशासन से थोड़ा ज्यादा युद्ध में अच्छा था विकर्ण, ये कारण था। और दूसरा कारण यह था कि 100 भाइयों में से विकर्ण ही एक था जिसने विरोध किया था द्रौपदी के वस्त्र हरण का, कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो विकर्ण खड़ा हुआ, भैया ये ठीक नहीं, ये जो आप कर रहे हैं ये दुशासन और ये जो कर्ण तुम्हारा मित्र ये सब जो मिलकर कर रहे हो ये सब बिल्कुल अधार्मिक है, ये असत सभा है। तो दुर्योधन जो विकर्ण को दिखा, मेरा ही भाई चिल्ला रहा है, तो दुर्योधन उसी समय उसने नोट कर लिया ये बागी बनेगा, ये कोई ठीक नहीं, इसने ये लगता है मेले में कहीं से मिला होगा मेरे बाप को। ये लगता नहीं कि इसके अंदर हमारा खून है, ये कोई हमारे खून वाला नहीं लगता, इसका खून थोड़ा ज्यादा शुद्ध लगता है, हमारी तरह शुद्ध नहीं है इसका खून। तो उस समय दुर्योधन ने नोट कर लिया था विकर्ण को, तो दुर्योधन अब विकर्ण को देख रहा है तो उसे याद आ रहा है उस समय ये विकर्ण ने प्रतिरोध किया था, तो इसलिए पहले विकर्ण को भी कह दिया अरे ये भी है तुम इधर ही रहना, जाना मत उस तरफ। तो एक एक करके सब जाते रहेंगे, एक तो चला गया सात्यकी। और फिर भूरिश्रवा, ये सोमदत्त इनके, सोमदत्त इनके पुत्र भूरिश्रवा। तो केवल इतना ही दिखाई दिया दुर्योधन को। अब समितिं जय का महत्व क्या है? समितिं जय का अर्थ है कि जो हर समय विजयी रहते हैं, ये समितिं जय का अर्थ है। Those who are ever victorious, जो हर समय विजयी रहते हैं। तो ये समितिं जय कौन से दो योद्धाओं के बीच में दुर्योधन कह रहा है? एक तो कृपाचार्य और एक अश्वत्थामा। क्यों? कोई कल्पना कर सकता है क्यों? क्योंकि दोनों चिरंजीवी हैं, तो दोनों चिरंजीवी हैं तो दुर्योधन जानता है अरे ये दोनों तो मरने ही नहीं वाले, तो मतलब ये विजयी होंगे। तो दुर्योधन हर दृष्टिकोण से आशा रख रहा है कि वो विजयी होगा, इसलिए ये दोनों समितिं जय ये मरने ही नहीं वाले तो ये विजयी होंगे। परंतु ये जितनी भी अपनी आशा बनाए हुए बांधे हुए है सभी आशाओं के ऊपर पानी फिरने वाला है जैसे युद्ध प्रारंभ होगा। तो ये दुर्योधन अब आगे कहता है कि मानो द्रोणाचार्य भीष्म इन्होंने दुर्योधन को पूछा बस इतने ही लोग हैं? नहीं नहीं अन्य और भी बहुत है। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो सबसे पहले वो कहता है कि अन्य भी बहुत हैं, कृतवर्मा शाल्य ये सब जयद्रथ ये अन्य भी बहुत लोग हैं, ये मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, अन्य भी बहुत लोग हैं। वो द्रोणाचार्य इनको कहता है कि ये सब पीछे खड़े हुए हैं और कोई पूछे कि ठीक है बहुत लोग होंगे परंतु ये आवश्यक नहीं कि बहुत लोग खड़े हैं तो तुम्हारी विजय निश्चित है। तो फिर दुर्योधन कहता है कि अन्य बहुत से लोग खड़े हैं वो शूरवीर हैं और नाना शस्त्र प्रहरणा नाना शस्त्र से सुसज्जित है, ये शस्त्र अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हैं, ऐसे ही हाथ हिलाते नहीं आए, बिडबैग लेकर नहीं आए लोग। नाना शस्त्र प्रहरणा अलग अलग अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में लिए हुए खड़े हैं। तो फिर मानो द्रोणाचार्य दुर्योधन को पूछे अरे शस्त्र हाथ में लेने से क्या तुम्हारी विजय हो जाएगी? तो शस्त्र हाथ में लिया होगा परंतु चलाना आता है क्या उसे? तो इसलिए वो कहते हैं सर्वे युद्ध विशारदा कि वो युद्ध में विशारद हैं, जैसे होता ना संगीत का विशारद, तो वैसे यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है कि ये लोग सब अच्छा ट्रेनिंग लिए हैं और बहुत त्याग के अंदर ही लिए हैं, ये युद्ध में विशारद हैं। तो फिर मानो द्रोणाचार्य पूछे कि हाँ बहुत से होंगे और नाना शस्त्र इनके पास होंगे और युद्ध में भी विशारद होंगे परंतु क्या ये तुम्हारे प्रति कोई अपनी आसक्ति रखते हैं कि नहीं, क्या ये तुम्हारे प्रति शरणागत हैं कि नहीं? तो फिर अंत में दुर्योधन कहता है कि हाँ गुरुदेव मदर्थे त्यक्त जीविता मद अर्थे कि मेरे अर्थ के लिए ये अपना जीवन भी त्याग सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि सरस्वती माता सरस्वती दुर्योधन के जिह्वा पर बैठकर क्या बुलवा रही है दुर्योधन को, मदर्थे त्यक्त जीविता कि दुर्योधन कह रहा है हाँ ये सब मरने वाले हैं। हालांकि दुर्योधन उसके कहने का आशय क्या था कि मदर थे मेरे अर्थ के लिए ये अपने प्राण भी त्याग सकते हैं, तो द्रोणाचार्य मानो कहे हाँ यही तो होने वाला है सबके प्राण जाने वाले हैं क्योंकि ये तुम्हारे पक्ष में है और मेरे भी जाने वाले हैं क्योंकि मैं भी तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारा भी जाने वाला है। तो ये मदर थे त्यक्त जीविता का ये अर्थ है कि दुर्योधन अब वो अपने मुख से यही सब बातें निकाल कर बोल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जो मदर्थे है, मदर्थे का अर्थ क्या है, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए ये लोग सब खड़े हैं और मेरे लिए ये लोग युद्ध करने के लिए उतारू हैं, त्यक्त जीवित अपना जीवन त्यागने के लिए सभी बोलते हैं ना कि वो तुम्हारे लिए तुम्हें प्राण भी त्याग दूं। आजकल लोग बोलते हैं अरे तो लोग बोलते हैं अरे प्राण नहीं चाहिए तुम कुछ करो मेरे लिए पैसे दो नहीं तो, कई बार लोग बोलते हैं तुम्हारे लिए तुम्हें प्राण भी दे सकता हूँ, अरे धन क्या ऐश्वर्य क्या। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन वो भी इसी प्रकार से बोल रहे हैं परंतु अर्जुन वो शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं इसी पहले अध्याय में यशाम अर्थ कि दुर्योधन यहाँ पर कह रहा है मदर थे परंतु अर्जुन कहते हैं ये क्या मर्थ किम राज्य न गोविंद किम भोग जीवित नवा ये क्या मर्थ एकांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च। ओ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि हम यदि ये भीष्म द्रोण इन सब को मार डालें तो फिर हम ये जो राज्य हमें मिलेगा ये किसके लिए होगा, ये श्याम भरतहरि इनके लिए तो होना चाहिए सब राज्य, ये होने चाहिए ना उस राज्य में, तभी तो मजा आएगा इनके साथ राज्य में रहने का। अगर कोई ये सब मर जाएंगे तो फिर राज्य में रहने का मजा क्या। तो पार्टी में ये लोग सब होने चाहिए जी, हम जश्न मनाएंगे हमारे। तो ये श्याम अर्थ है। तो यहाँ पर अर्जुन वो मदरसे नहीं कह रहे, दुर्योधन जो मदरसे कह रहा है, अर्जुन दुर्योधन की तरह इतने स्वार्थी नहीं, वो कहते हैं ये श्याम अर्थ है कि अरे इनके अर्थ के लिए तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, मदर्थे, जो दुर्योधन ने किया मदर्थे त्यक्त जीविता। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं 12वें अध्याय में, अभ्यासे समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धम अपाप्यसि। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति वो पूर्ण प्रकार से शरणागत नहीं हो सकता, तो कम से कम मेरे लिए अपना कर्म करे। और मद अर्थे, यहाँ पर कहा मद अर्थे अपि कर्माणि, कि वो अपने कर्म मेरे अर्थ को सिद्ध करने के लिए करें। तो हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, दुर्योधन द्वारा मद अर्थे जो वो कह रहा है, अर्जुन द्वारा येषाम अर्थे, और भगवान श्री कृष्ण वो भी कहते हैं मद अर्थे। तो जो दुर्योधन कह रहा है मद अर्थे, वो कौन सी श्रेणी में आता है, स्वकेंद्रित इंद्रिय भोग। येषाम अर्थे अर्जुन का जो है वो है विस्तारित इंद्रिय भोग। अंग्रेजी में इसे कहेंगे, दुर्योधन का है कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ही सिंपली कंसर्न अबाउट मदर, ही इज ओन कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। एंड अर्जुन इज कंसर्न अबाउट अदर्स, लाइक सम काइंड ऑफ फिलेंथ्रोपिक पर्सन, कोई दानशूर व्यक्ति। परंतु ये भी एक प्रकार का इंद्रिय भोग है, क्योंकि अर्जुन जब वो येषाम अर्थे बोल रहे हैं, तो अर्जुन ये दिखा रहे हैं कि मैं जब जीतूंगा ये युद्ध, तो मेरी जीत किसी को दिखनी चाहिए ना। अभी देखिए कि जब कोई व्यक्ति जीतता है, या किसी खेल में, या अपने कॉलेज में, स्कूल में, कुछ भी, या ओलंपिक्स वगैरह में लोग जीतते हैं, तो जीतने के बाद वो सबको दिखाना चाहते, देखो ये मेडल, हाथ ऊपर करके खड़े होते ना फर्स्ट पोजीशन पर। तो मानो कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो किसी खेल में या किसी स्पर्धा में जीता है, और कोई जानता नहीं कि वो जीता। अक्सर देखिए हमारी प्रवृत्ति कैसी रहती है कि हम ये दोनों श्रेणी में आ जाते हैं, दुर्योधन और कई तो दुर्योधन, अधिकांश तो दुर्योधन की श्रेणी में आते हैं, मदरते मदरते मदरते, सब मेरे लिए होना चाहिए। और कई थोड़ा वो थोड़ा निस्वार्थ भाव उनके अंदर रहता है, परंतु उसमें वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर देखो कैसा निस्वार्थ भाव है, कि मैंने ये किया, मैंने दान दिया। हाँ, लिखो ना नाम, लिखो ना, थोड़ा बोर्ड पर वो, या फिर वो टाइल बनाते हैं उनके नाम की, कि फलाने फलाने उद्योगपति ने इतने हजार इतने लाख इस कार्य के लिए अस्पताल खोला, अस्पताल में उन्होंने एक बेड डोनेट किया, या तकिया डोनेट किया, या तकिए का कवर डोनेट किया, या कवर को साफ करने के लिए साबुन डोनेट किया, कुछ तो डोनेट किया, तो कुछ उसका सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कहीं पर। तो मानो कि कोई स्पर्धा में जीता है, ये सब कुछ हुआ, और कोई नहीं उसको बधाई देने के लिए। तो कई बार होता है ना कि जब 10th 12th में अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना, तो सबके घरों में जाके पेड़े बांटते हैं, तो पेड़े खाइए, क्यों, मैं पास हो गया ना, 70% मिला है, खाओ खाओ पेड़े खाओ, मेरे नाम से खाना, मेरे नाम से गुणगान मेरा होना चाहिए। होता है ना। तो जब हम کچھ حاصل کرتے ہیں تو ہم پھر ڈھول نگارا لے کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا میرے ساتھ, دیکھو دیکھو دیکھو. تو اسے کہتے ہیں وستارت اندریہ بھوگ, یہ بھی اندریہ بھوگ میں ہے, اسے کہتے ہیں وستارت اندریہ بھوگ. تو وہی ارجن, ایسا نہیں کہ ارجن کوئی بہت بڑے دانشور ویکتی کی طرح بول رہے تھے, ارجن اس سمے بھومیکا نبھا رہے تھے ایک وستارت اندریہ بھوگی کی. کہ بھگوان کو کہتے ہیں کہ یدی ہم جیت بھی لیے تو یہ لوگ سب ہونے چاہیے نا ہماری جیت کو دیکھنے کے لیے, ارے یہ لوگ سب مر جائیں گے تو پھر ان کو چڑھائیں گے کیسے ہم لوگ, دریودھن کرپا درون بھیشم یدی سب مر جائیں گے تو ان کو چڑھائیں گے نا, دیکھو جس کے پیچھے اتنا بھاگ رہے تھے ہم لوگ حاصل کر کے. تو اس لیے یہ یشامر تھے. پرنتو جو بھگوان شری کرشن مدر سے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کرشن کی اندریوں کی جو وانشا ہوتی ہے ان کی پریتی, ان کی پریتی کے لیے جو ارتھ کیا جائے اسے کہتے ہیں, اس میں بھگوان جو مدر سے کہتے ہیں اس کے لیے ہم چرچا کریں گے کہ دونوں میں انتر کیا ہے, یہ دونوں مدرسے میں انتر کیا ہے, دریودھن دوارا کہا گیا جو مدرسے اور بھگوان شری کرشن دوارا مدرسے جو کہا گیا. تو کپل منی بھی دیوہوتی ماتا دیوہوتی کو کہتے ہیں مدرسے چکت کرمان چکت سوجن باندھو, کہ یہاں پر بھی کپل منی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ارتھ کے لیے اپنے کرم کرتا ہے اور اپنے سوجن اور باندھووں کو میرے ارتھ کے لیے سیوا میں نیوکت کرتا ہے وہ سروچ ہے. تو یہاں پر بھی بھگوان کپل منی مدر تھے اپنے ارتھ کے وشے میں کہہ رہے ہیں. تو دریودھن ایوم بھگوان شری کرشن کے مدر تھے کہنے میں انتر کیا ہے, کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ارے تو دونوں میں انتر کیا ہے, دریودھن بھی مدر تھے کہہ رہا ہے اور آپ کے کرشن بھی مدر تھے کہہ رہے ہیں, تو دونوں سوارتھی ہیں ہے کہ نہیں, یہ پرتیت ہوگا. پرنتو چیتنیہ چریتامرت میں کہا گیا ہے آتمیندری پریتی وانشا تارے بلی کام, کرشنیندری پریتی وانشا دھرے پریم نام, کہ یہ جو مدر تھے ہم کہتے ہیں جب اسے کہتے ہیں آتمیندری پریتی وانشا, ہم اپنی پریتی وانشا کے لیے جو بھی ہماری کامنا وانشا کرتے ہیں اسے کام کہا گیا ہے. پرنتو کرشنیندری بھگوان شری کرشن کی اندریوں کو سنتوشت کرنے کی جو وانشا ہوتی ہے دھرے پریم نام, اور ایک سندر ادھارن چیتنیہ چریتامرت میں دیا گیا ہے کہ جیسے لوہا ہے اور سونا, سونے میں اور لوہے میں سمانتائیں کیا ہے, دونوں دھاتو ہیں, کیا ایک ہی ہے, دھاتو ہیں پرنتو دونوں میں انتر کتنا ہے, زمین آسمان کا انتر ہے. یدی کوئی شادی میں اپنا گہنا بنانا چاہتا ہے تو کیا کس کے پاس جائے گا, سونار کے پاس جائے گا لوہار کے پاس جائے گا, کلپنا کیجیے کسی کی شادی ہو رہی ہو لوہار کے پاس جائے گا, تھوڑا ایک ہار بناؤ کس کا, لوہے کا, یہ بنانا کنڈل لوہے کے, یہ ور مالا بھی لوہے کی, تو پھر دونوں یدی ایک دوسرے کو ور ودھو مالا پہنائیں گے لوہے کی تو ہو گیا پھر وہیں پر. تو وہ سونار اور لوہار حالانکہ دونوں دھاتوں سے ہی ڈیل کرتے ہیں پرنتو انتر کتنا ہے, ایک جو ہے وہ سونا ہے اور ایک لوہا. تو ویسے ہی یہ جو کام باسنا ہے بھوتک سنسار کی, یہ لوگوں کو ان کو لوگوں کو کیا لگتا ہے, یہ پریم. تو اکثر گانے بھی وہی گاتے ہیں, میں نے تم سے پریم کیا تم نے مجھ سے پریم کیا, اور ہے کیا, لوہا ہے وہ, کام واسنا ہے. تو کام واسنا کو وہ لوہے کو سونا بول رہے ہیں, اور اتنا ہی نہیں کلیگ میں تو سونے کو لوہا بول رہے ہیں. ایک یہ بات ہو گئی کہ کوئی ویکتی سونے کو لوہا بولے, پرنتو یدی لوہے کو سونا بولے, پرنتو یدی کوئی سونے کو لوہا بول رہا ہے تو وہ بہت بڑا مورکھ ہے. کبھی دیکھا کہ وہ جو ترازو میں وہ رکھتے نا ایک کلو دو کلو سونے کے بسکٹ کوئی رکھتا ہے, यहाँ पे 1 किलो 100 किलो, तो व्यक्ति वो देखने वाला है, बोला ये कितने का, ये दोना पड़ता। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में यही बताया गया है कि स्वयं मदर थे, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांशा उसे कहा गया है काम, और कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांशा धरे प्रेम नाम, वो असली प्रेम है। इसलिए दोनों में अंतर है। जैसे कि भगवान गीता के 7वें अध्याय में कहे हैं, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजस्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चास्मि तपस्विषु। यहाँ पर जीवनम सर्वभूतेषु भगवान कहे हैं, कि कोई व्यक्ति पूछे कि भाई क्या भगवान स्वार्थी हैं कि स्वयं की इंद्रिय की वांछा हमसे करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि भगवान स्वार्थी प्रतीत हो, परंतु यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि नहीं, वो स्वार्थी नहीं, क्योंकि वही सबके जीवन है। यदि उनकी इंद्रियों को संतुष्ट यदि कोई नहीं कर रहा तो वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान की तुलना पेड़ के जड़ से की गई। यथा कवल मूल निषेचने न तृप्यंती तद स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारा क्षयतेन्द्रियाणाम सर्वार्णम भजम अच्युतेज्य। कि भागवत के श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण वो जड़ के समान है। अब यदि कोई पेड़ को पानी देने आए और मानो कि पेड़ के जो अलग अलग अंग हैं, जड़ शाखाएं पत्ते फूल फल ये सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, और जड़ मानो वो मालिक को कहे नहीं 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 मुझे पानी मत दो, पत्तों को दो। तो यदि जड़ वो निस्वार्थी बनने का प्रयास करे और कहे कि नहीं पानी सब इन पत्तों को दो, शाखाओं को दो, ये सब देखो ऊपर दिखते हैं इतने सुंदर, मैं तो दिखता भी नहीं और मैं इतना सुंदर भी नहीं, तो इनको सब पानी दो, तो क्या ये निस्वार्थ भावना इस जड़ की सराहनीय है? क्यों नहीं? क्योंकि जड़, और यदि जड़ इसके विपरीत कहे मालिक को किसी को पानी मत दो, यहां इधर लाओ सारा पानी इधर लाओ, तो क्या आप जड़ को स्वार्थी कहोगे? तो इसलिए जब भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मदर थे अपि कौन्तेय, मदर थे च कर्माणि, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, तो ये किसके समान है? जैसे जड़ मालिक को कह रहा है मुझे दो मुझे दो मुझे दो, परंतु इसके पीछे छिपा क्या है? इसके पीछे जैसे कि जड़ की कृपा भावना छिपी है शाखाओं के प्रति पत्तों के प्रति, क्योंकि जड़ जानता है कि मुझे पानी नहीं मिलेगा तो ये सब सूखने वाले हैं। वैसे ही उस श्लोक में कहा गया है प्राणोपहारा चयते इंद्रिया, जैसे हमारे शरीर में सारी इंद्रियां हैं और ये पेट है, तो यदि सारी इंद्रियां आपस में बोले कि हम स्ट्राइक पे जाते हैं हड़ताल पर कि ये पेट खाली बैठा रहता है और कुछ करता नहीं, खाली अंदर अपने गोदाम में भरता रहता है, और इसके गोदाम में भरने के लिए हमको यहां वहां भागना पड़ता है। पैर बोलते हैं मैं भागता रहता हूँ दिन रात यहाँ वहां, हाथ बोलता है कि अरे मैं सब कार्य कर रहा हूँ, आंखें बोलती मैं देखता हूँ। तो यदि ये सब बोले आपस में कि हम लोग ये सब कर रहे हैं और सब कुछ मिलता है इसे इसे कल से बंद कुछ नहीं दें, तो यदि जो पेट स्वयं कहे कि नहीं जो कुछ है हाथ को उंगलियों को कहे कि वो उठाओ और इधर डालो, उंगली कहे नहीं मैं अपने अंदर डालू चपाती को, तो मानो यदि वो उंगली चपाती का भोग करने जाए या रसगुल्ला का भोग करने जाए तो उंगली रसगुल्ला का भोग कैसे करे, घुमाइए हो गया रसगुल्ला का भोग, तो इसलिए पेट कहता है कि छोड़ो उसको, उसको उठाओ और यहां डालो अंदर। फिर जिह्वा को भी पेट बोलता है कि खा पी के उसको अंदर अच्छी से रिसाइकल करके भेजना। तो सारे जो अंग हैं वो एकत्रित होते हैं पेट का पोषण करने के लिए, क्योंकि उनका पोषण पेट के पोषण में ही छिपा हुआ है। तो वैसे ही ये दो उदाहरण भागवत में दिए गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तुलना पेट के जड़ से की गई है और हमारी इंद्रियों में से हमारे पेट से की गई है। तो इसलिए जब भगवान मदरते कह रहे हैं तो इसके पीछे भगवान का निस्वार्थ भाव है हमारे उद्धार हेतु। परंतु जब दुर्योधन मदरते कहता है तो वो उसका स्वार्थ, और वो भी कौन सा, स्व केंद्रित इंद्रिय भोग। तो ये भगवद गीता में ये तीन अर्थ समझ में आते हैं हमें। पूरी भगवद गीता है क्या, मदर्थे से येषामर्थे से मदर्थे, समझ में आ गया कि दुर्योधन जो मदर्थे कह रहा है वहां से अर्जुन थोड़ा ऊंचा है, वो येषामर्थे, वहां से फिर से मदर्थे को समझना हमें, और वो है भगवान श्री कृष्ण का। भगवद गीता यही है कि हम जो अब तक अपने विषय में कह रहे हैं मदर्थे मदर्थे, तो वो दुर्योधन की भावना से बाहर उठकर हमें भगवान श्री कृष्ण की भावना में जाना है, और वही है भगवद गीता का सार, भगवद गीता का रहस्य। तो अब हम आगे देखेंगे कि दुर्योधन अब तक वो समाप्त नहीं हुआ है, अपने भाषण को खत्म नहीं किया उसने, यहाँ पर तो केवल सात योद्धाओं का वर्णन कर दिया इन दो श्लोकों में। अब वो देख रहा है कि भीष्म पितामह शायद नाराज हो गए होंगे, क्योंकि मैंने द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया, तो अब भीष्म पितामह को सांत्वना देने के लिए थोड़ा वहां पर घूस देनी चाहिए अभी। तो इसलिए दुर्योधन अब भीष्म पितामह के पास आगे जाएगा, और भीष्म पितामह से क्या चर्चा दुर्योधन करेगा इसकी चर्चा हम कभी करें, ठीक है? आप ही लोग बोल रहे हैं। अगले बुधवार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगले बुधवार से हम गौर पूर्णिमा का महोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं, और इस वर्ष गौर पूर्णिमा है 21 मार्च को। गौर पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए उनकी जन्माष्टमी या कह सकते हैं, तो उनका जन्म दिवस गौर पूर्णिमा जो कि 21 को है, और 19 से हम गौर कथा प्रारंभ करेंगे, तो वो है बुधवार, और आप लोग सब उसके लिए आमंत्रित हैं। तो बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, शुक्रवार के तो पूरे दिन होगा कार्यक्रम, सुबह गौर कथा होगी, फिर शाम को जो विशेष गौर पूर्णिमा का कार्यक्रम जिसमें गौर नेताय का अभिषेक होगा, और फिर कथा और कीर्तन, ड्रामा और क्या, फिस्ट। और फिर उसके दूसरे दिन जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात नंदोत्सव मनाते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म के दूसरे दिन जगन्नाथ मिश्रा जो कि चैतन्य महाप्रभु के पिता, तो उन्होंने जो उत्सव मनाया जगन्नाथ मिश्र उत्सव, तो वो होगा 22 तारीख को, और उस उत्सव के लिए मुंबई से विशेष रूप से श्रीमान गोविंद प्रभु आने वाले हैं, तो वो हमारे यहाँ पर रहेंगे शनिवार को और रविवार के कार्यक्रम में भी, और रविवार का कार्यक्रम भी गौर कथा से ही हम संदर्भ में रहेगा, और तत्पश्चात हमारे अन्य कार्यक्रम चलते रहे। तो आप सबको ये विशेष आमंत्रण दिया जा रहा है, और विशेष रूप से आप और भी लोगों को लेकर आइए गौर कथा के लिए जो अगले बुधवार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है आज जो हमने चर्चा की उसके संदर्भ में? हाँ, इसलिए भगवान कहें कि गुरु की शरण जाना है, कि भगवान की इच्छा हमें समझ में आती है गुरु के द्वारा। इसलिए भगवान बोले हैं तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया। जैसे कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, वो अपनी इच्छा को व्यक्त कैसे करता है? अपने सेक्रेटरी द्वारा और अन्य जो सहायक है उस व्यक्ति के, उन सहायकों द्वारा वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है। तो उसी प्रकार से भगवान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उनके जो पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, गुरु जो है, गुरुजन है वो। तो इसलिए हम रोज सुबह जो गाते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। कि हम गाते हैं कि यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनको प्रसन्न करना होगा। और भगवान को प्रसन्न करना ये कैसे कर पाएंगे? कि उनके प्रतिनिधि बताएंगे, कि वो बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न कैसे करना है। तो इसलिए और गुरु तक भी हम सीधे नहीं पहुंच सकते, इसलिए गुरु साधु शास्त्र। तो भगवान ने कह दिया कि वो प्रसन्न होते हैं कैसे? शास्त्रों में। और वो शास्त्रों का मर्म समझना है हमें गुरु के मुख से, और गुरु तक हम पहुंचेंगे साधुओं के द्वारा। तो इसलिए ये चैनल फॉलो करेंगे तो भगवान तक हम पहुंचेंगे, और भगवान जो कह रहे हैं कि कैसे प्रसन्न होते हैं वो हम कर पाएंगे। जरूर इनकी कथा वर्णन है महाभारत में कि कृपाचार्य, मुझे अब ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है, परंतु महाभारत में इसका वर्णन है कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य इन दोनों को, हालांकि और भी बहुत से हैं परंतु महाभारत से संबंधित ये दोनों हैं। तो इनकी कथा तो मैंने काफी सालों पहले पढ़ी थी, तो मैं अब कुछ ही कथा नहीं कहना चाहता। मैं उसको पूरी पढ़कर अगली बार आपको बताऊंगा कि वो उसका इतिहास क्या था। नहीं, चिरंजीवी का अर्थ देखिए, चिरंजीवी का अर्थ ये नहीं कि वो टेक्निकली अमर बन जाते हैं। ऐसे अमर तो कोई है नहीं। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहें, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है। तो द्रोणाचार्य वो जानते थे कि अश्वत्थामा को और कोई नहीं मार पाएगा पांडवों के अलावा, तो इसलिए सबसे ज्यादा डर द्रोणाचार्य को इसी का था कि इस रणभूमि में ही योद्धा उपस्थित हैं जो मेरे पुत्र पर हानि पहुंचा सकते हैं। और एक दृष्टिकोण से हम यदि हम लें तो द्रोणाचार्य वो भूमिका निभा रहे थे, तो उन्हें बहाना चाहिए था रणभूमि को छोड़ने का, क्योंकि यदि द्रोणाचार्य वो रणभूमि में अपना प्राण नहीं त्यागेंगे तो वो युद्ध पांडवों के पक्ष में नहीं जाएगा। तो ये एक हायर रीजन है जिसके कारण द्रोणाचार्य ने वो एक बहाना लिया और फिर युद्ध को त्याग दिया।
My question is regarding Rathi Maharathis, when we mentioned these are so called experts. And we say they are the experts in Shastra as well as Shastra. Can somebody have these dual roles? Whether in that yug or in today's yug, can anybody play this dual role?
In Kali Yug?
In Kali Yug. No, what I'm saying is it the right thing that somebody has these dual roles? Because it is not normally identified. If he is good in Shastra, he cannot be a Yodha.
See, one thing is, how do you define that battle, that yudha? Now, in previous times, the kshatriyas or these maharathis, they would literally fight, you know, like actual battle. But now, the battle which you are talking about, that battle is, first of all, based on irreligion. People who are fighting, literal sense, you know, the battle and wars which are going on. It has no basis of any scriptures. So even if anyone who might be, say, a soldier fighting, you know, say, for some country or for some whatever, defense. Nowadays, you know, the entire country and the principles of that country are not based on any scripture. So even if he's Visharad in Shastra, the basis of his fighting is not Shastra. So he can't play dual roles.
But during that time, what was the purpose then?
To establish dharma. All the battles were fought to establish dharma. So therefore, because the people who would rule after the war, they were all Rajarishis. So they would win over other kingdoms. Why? Because if they would see that this kingdom is not following dharma, so they would attack that kingdom. You are not following dharma, so you come under me, and then I will make sure that all the subjects of that kingdom follow dharma. So the wars were fought for this one reason. Not that I want the chair, gandhi and, you know, money and all these other things. So which means, in that case, whatever they were doing, it was all based on Shastra. So nowadays, you know, people, they might have expertise in Shastra, but it's totally baseless. It's not based on any Shastra.
That means when Arjuna took the chariot in the center, he to gauge how enthusiastic the warriors are. He was trying to gauge how enthusiastic they are for religion.
No, no.
Not for war.
No, no. That time, the first chapter of Gita, Arjun, his view is not that he is viewing these warriors as those warriors who are assembled to establish dharma. Arjun is viewing them as warriors who have come just for the sake of some kingdom. So that was what the whole Gita was, to change this viewpoint of Arjun, make it purified. And that's what the whole Gita is, Krishna trying to tell to Arjun, that your viewpoint as you look at them should be that they have all come together because I want them all over here. Because I want that the miscreant should be destroyed and people like you should rule. Okay, we'll stop here. Thank you all very much. Bhav bhav dhanyavad. Hare Krishna. जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna.
Krishna Hare 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 Rama
कीर्तन की श्री प्रभुपाद की निताई गो प्रेमानंदी महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते।